آیت نمبر 71 سے 71 میں پھر اللہ تعالیٰ انسان کو متوجہ کرتے ہیں کہ اے انسان تو شکر گزار ہو، اے انسان جو تجھے نعمتیں عطا کی ہیں ان سے تو فائدے تو حاصل کرتا ہے، ان کا استعمال کرنے کے بعد تو میرے آگے جھک کیوں نہیں جاتا؟ کہا اولم یرو، کیا یہ نہیں دیکھتے؟ انا خلقنا، بے شک ہم نے پیدا کیا، یہ کہ ہم نے پیدا کیا، لہم ان کے لیے، تو کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان کے لیے پیدا کیا ہے؟ مما عملت ایدینا، مما کے معنی کیا ہیں؟ کہ جو کچھ عملت بنایا، ایدینا ہمارے ہاتھوں نے، کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے جو کچھ ان کے لیے پیدا کیا ہے یہ اس کی طرف نہیں دیکھتے. اور انعامن آگے آ گیا، تو انعامن کے معنی کیا ہیں؟ خاص طور پر جو ہے وہ مویشیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے انعام جو ہے نون عین میم سے ہے، اور اس سے اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، دمبا مراد لیا جاتا ہے. اور خاص طور پر تو اونٹ مراد لیا جاتا ہے، لیکن اونٹ کے ساتھ ہی انعام کے اندر باقی یہ جانور بھی آ جاتے ہیں. اور یہ کون سے جانور ہیں؟ یہ وہ جانور ہیں جن سے عرب، جن کو عرب استعمال کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو ہم نے اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ پیدا کیا، یعنی ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے ہیں. اب ہاتھوں کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بطور استعارہ استعمال ہوا ہے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ اللہ تعالیٰ جسم رکھتے ہیں یا انسانوں کی طرح ہاتھ ہیں جو اللہ کے کام کرتے ہیں، بلکہ احساس دلانا مقصود ہے کہ جو کچھ بھی ہے اللہ کا بنایا ہوا ہے. مویشیوں کی تخلیق میں انسانوں کا اپنا کچھ بھی دخل نہیں ہے، ذرہ برابر دخل نہیں ہے. ایدینا اپنے ہاتھوں سے، انعامن مویشی، فہم لہا مالکون، اور یہ اس کے مالک بنے ہوئے ہیں. مالکون اسم فاعل ہے، مالک کی جمع ہے، کہ اب یہ ان کے مالک ہیں. تو وزللناہا، اور ہم نے قابو میں کر دیا ان کو. زللنا اصل میں فرما برداری کے لیے آتا ہے، ہم نے ان کو رام کر دیا، ہم نے ان کے بس میں کر دیا. جانور اب ہے اور دیکھیں کہ انسان کے قابو میں ہے. فمنہا رکوبہم، پھر ان میں سے کسی پر تو یہ سواری کرتے ہیں. ومنہا یاکلون، اور کسی کو یہ کھاتے بھی ہیں، کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں اور کسی کا گوشت کھاتے ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ہیں ان کے لیے اس میں منافِعُ، جو ہے یہ کیا ہے؟ فائدے. نون سے عین سے ہے منافع، فوائد کے لیے استعمال ہوتا ہے. وَمَشَارِب، اور مشارب، مشارب جو ہے یہ مشرب اس کا واحد ہے، اور مصدر مینی ہے، گھاٹ اور پینے کی جگہ کو کہتے ہیں. چشمے بھی اس سے مراد ہیں اور تھن بھی مراد ہیں، مشارب. تو کیا ہے کہ ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد ہیں اور مشروبات ہیں. افلا یشکرون، پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے کہ نعمت کا ملنا، اور نعمت کا جب مل جائے اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دی تو انسان شکر کیوں نہ کرے؟ اب آپ دیکھیں، اگر یہ اونٹ جو ہیں، اگر یہ اونٹ ہوتا ریچھ کی طرح، اب ریچھ ہے یا بھیڑیا ہے، تو کیا انسان اونٹ سے فائدہ اٹھا سکتا تھا؟ اب اونٹ کو دیکھیں، لائنوں کی لائن اونٹ کی ہوتی ہے. ایک چھوٹا سا بچہ، ایک رسی سے دوسرا اونٹ باندھا ہوا ہوتا ہے، دوسرے سے تیسرا اونٹ، ایک چھوٹا سا بچہ اس کی مہار تھامے ہوئے آگے چل رہا ہوتا ہے. ان کی خانہ بدوشی کی زندگی دیکھیں، اور لائن کی لائن اونٹوں کی ان کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے. اسی طرح یہ بھیڑوں کا پورا ایک گلہ ہے، ریوڑ ہے، جس میں بھیڑے ہیں، بکریاں ہیں، دمبا ہے، دمبے ہیں. چھوٹا سا بچہ ہے، چرواہا ہے، ان کو چرا رہا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر احساس دلا رہے ہیں کہ میں نے یہ چیزیں جو ہیں تمہارے لیے متی کی ہیں. یہ جتنے مویشی ہیں، آپ گھوڑے کو دیکھیں، گھوڑا دلتی مارے تو انسان مر جائے، ہے نا. اسی طرح اگر اونٹ انسان کی کھوپڑی میں اپنے دانت گاڑ دے، इंसान खत्म होके रह जाए। कितना जुस्सा है, अजीमुल जुस्सा जानवर। हाथी को देखें, अगर वो अपने पांव तले इंसान को फना करके मसल दे तो क्या है, कोई है जो उसको रोक सके? तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने जिस तरह बेजान चीजों को मुसख्खर किया है ना, पीछे आपने सूरज चांद और हर चीज के बारे में पढ़ा, रात दिन बेशुमार चीजें हैं जो अल्लाह ने मुती की हैं हमारे लिए, कश्तियां हैं, समंदर हैं, फिजा है, सारा कुछ अल्लाह ताला ने जिस तरह मुती किया। अल्लाह ताला कहते हैं इंसान, मैंने जानवरों को भी तुम्हारा नौकर बना दिया, गुलाम बना दिया, खाते भी हो, सवारियां भी करते हो, और बहुत से नफे जो हैं इससे मुराद चमड़े से जैकेटें बनाना, खेमे बनाना, है ना, हाथी दांत से बहुत सी चीजें बनती हैं। तो बोया के बहुत से फायदे हैं, अफला यशकुरून, क्या तुम शुक्र अदा नहीं करते? तो असल चीज जिसकी तरफ मुतवजो किया जा रहा है वो ये है कि इंसान तू मेरी बंदगी क्यों नहीं करता, तू मेरे मेरा मुती क्यों नहीं होता, सारी दुनिया जो तेरे लिए सजाई। एक बात कही थी कि तू अपने दिल में मेरी मोहब्बत सजाना, तू अपने जिस्म को मेरे आगे झुकाना, इंसान तू एक काम भी ना कर सका। वत्ताखज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन, इन्होंने पकड़ लिए अल्लाह को छोड़कर आलिहतन माबूत, दूसरे खुदा बना लिए, लअल्लहुम युनसरून, और उम्मीद ये रखते हैं कि इनकी मदद की जाएगी, उम्मीद ये रखते हैं कि इनके माबूद इनकी मदद करेंगे। ला यस्ततीउन नसरहुम, वो इनकी कोई मदद नहीं कर सकते, वहुम लहुम जुंदुम मुहदरून, और इनके जो माबूद हैं मदद करना तो दूर की बात, वहुम और ये मुशरिकीन, लहुम इनके लिए जुंदुन, बतौर मुजरिम फौज बने हुए हैं, मुहदरून, ये हाजिर कर दिए जाएंगे। इसके माने ये हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि दुनिया में जिनको इन्होंने माबूद बना रखा था, कयामत के दिन इनके मुखालिफ बनकर इनके खिलाफ गवाही देंगे। जुंद क्या है, यानी मुखालिफ फौज बनकर हाजिर किए जाएंगे। समझ आई बात की, कि मुखालिफ फौज बनकर जो है वो क्या करेंगे, इनके खिलाफ गवाही देंगे। माबूद कहेंगे कि इन्होंने खुद ही अपनी हमारी पूजा की थी, हमने थोड़ी इनको कहा था, या ये कहेंगे कि हमने तो इनको कहा था, हमारे हमारी इनके ऊपर कोई जो है वो इख्तियार थोड़ी था, दावत ही दी थी ना, मर्जी तो इन्होंने अपनी की थी। फिर इसके एक और मानी भी है कि इन्होंने बुतों को तो इसलिए बनाया था कि ये इनकी मदद करें, अब हो ये रहा है कि मदद करने के तो ये काबिल ही नहीं है। अब क्या है कि वो लोग जो इन बुतों की इबादत करते थे, अब इनके सिपाही बन जाएंगे, वहुम लहुम जुंदुन, अब अपने माबूदों के सिपाही बनेंगे, और क्या करेंगे, दुनिया में सिपाही बनकर इनकी हिफाजत करते थे, अब क्या है, वहुम लहुम जुंदुम दरून, अब इनके खिलाफ लश्कर बन के कहेंगे, अब इनके खिलाफ बोल रहे हैं कि इन्होंने हमें बिगाड़ा था। ये सारे मानी हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है, क्योंकि सूरत यासीन की इब्तदा जो है हुई तो कैसे हुई, अल्लाह ताला ने इब्तदाई आयात में कहा, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, कुरान की कसम खाई और कहा कि यकीनन तुम रसूलों में से हो और सीधे रास्ते पर हो, है ना, कुरान और रसूल की सदाकत पर अल्लाह ताला ने फिर कायनात से दलाइल दिए, फिर तौहीद और आखरत के दलाइल। अब आखिर में फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है, फला याजुन का कौलुहुम, इनकी बातें आपको अफसुर्दा ना करें, इन्ना नालमु मा युसिरुना वमा युलिनून, हम जानते हैं, बेशक हम जानते हैं जो ये छुपाते हैं और जो ये जाहिर करते हैं, यानी इनकी खुली और छुपी बातें सब हमें पता है। क्योंकि अहले मक्का कुछ तो महफिलों में रसूलुल्लाह के खिलाफ, कुरान के खिलाफ बातें करते थे, और कुछ अलग होकर छुप कर लोगों को आपसे बदगुमान करते थे। तो अहले मक्का का जो झूठ है, आपके आपकी जो साजिशें, आपके आपके ऊपर वो जो इल्जामात लगाते थे, अल्लाह ताला कहते हैं इनका आपको काहिन, साहिर, मजनू, दीवाना और जो कुछ भी ये कहते हैं, दावत को नीचा करने की ये जो चाले चलते हैं, नालम हम खूब जानते हैं। अवलम यरल इंसानु, फिर अल्लाह ताला जो है दलील देते हैं। दलील किस चीज की है? आयत नंबर 48 में आप इनकी ये इतराज पढ़ चुकी हैं। वो ये कहते थे मता हाजल वादू इन कुंतुम सादिकीन। क्या कहते थे? फयकुलूना मता हाजल वादू इन कुंतुम सादिकीन। तो हाजल वाद से मुराद कौन सा वादा है? कयामत का वादा, कि कयामत की धमकी आखिर कब पूरी होगी। अल्लाह ताला फिर उसकी उसका जवाब देते हैं, अवलम यरल इंसानों, क्या इंसान ने नहीं देखा, अन्ना खलकनाहू, कि हमने उसको पैदा किया, मिन नुतफातिन, हकीर से पानी से, नुतफा से, एक हकीर से पानी से हमने इनको पैदा किया, फायदा पस अचानक हुआ वो खसीमुन। खसीमुन क्या है? कि वो झगड़ालू है, मुबीन, साफ साफ। फिर वो सरी झगड़ालू बनकर रह गया। इस सिलसिले में मुफस्सरीन ये कहते हैं कि कुफारे मक्का के सरदारों में से आस बिन वाइल या उबई बिन खल्फ ये कब्रस्तान गया और मुर्दे की एक बोसीदा हड्डी लेकर आया, रसूल अल्लाह के सामने उसे तोड़ा, और क्योंकि वो बोसीदा थी, पुरानी हो चुकी थी, तोड़कर उसके अज्जा को हवा में उड़ाकर आपसे कहने लगा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कहते हो कि मुर्दे फिर जिंदा करके उठाए जाएंगे, बताओ इन बोसीदा हड्डियों को कौन जिंदा करेगा। इसका जवाब फौरन इन आयात की सूरत में दिया गया कि वो झगड़ालू इंसान बन गया। वदरबा लना मसलन, और मिसाल भी हमारे लिए, वदरबा और मारा, लना हमारे लिए मसलन मिसाल, तो इसने बयान की हमारे ऊपर मिसाल, व नसिया खलकहू, और भूल गया अपनी तखलीक को, अपनी पैदाइश को, हकीर से पानी के नुतफे से इसको पैदा किया, पहले भी कुछ नहीं था, मैंने हकीर पानी के नुतफे से इंसान को पैदा किया और ये अपनी पैदाइश को भूल गया, अब अजीमुल जुस्सा बनकर, अब गुरूर करके, किबर करके पहाड़ों के साथ मिलना चाहता है, किबर करता है। काला कहता है, कहा मैं यूही इजामा, कौन जिंदा करेगा इजामा हड्डियों को, वाहिया रमीम, और जो बोसीदा है, रमीम आप याद रखिएगा, पुरानी और बोसीदा के लिए कुरान में कई लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन रामीम गली हुई हड्डी को कहते हैं या रस्सी को कहते हैं, और ये सिफ्त मुशब्बा है, रमाम इसकी जमा है, और हड्डी का बोसीदगी की वजह से काबले मुरम्मत होना। मसलन आप देखिए कि सूरत नाजियात में अल्लाह ताला क्या कहते हैं, सूरत नाजियात में अल्लाह ताला कहते हैं कि कयामत आएगी, है ना, यौम तरजुफुर राजिफा तत्बाउहर रादिफा कुलूबुन यौमइज़िन वाजिफा अबसारुहा खाशिया यकूलूना इन्ना लमर्दूदून फिल हाफिरा लमर्दूदून फिल हाफिरा। हाफिरा जो है इसके मानी क्या है? कि हमें फिर लौटाया जाएगा, हमें फिर जो है वापस किया जाएगा, कब? आइजा कुन्ना इजामन नखिरा, यहां पे है इजामा रमीम, वहां पे क्या है? इजामन नखिरा। तो नून खारा ऐसी हड्डी को कहते हैं हो तो पुरानी, लेकिन पुरानी होकर खोखली हो जाए, तो नखिरा कहते हैं, बजने लगे, खनकने लगे, है ना। तो यहां पे क्या है कि नखिरा, कि हड्डी का पुराना होकर खोखला हो जाना, लेकिन यहां पे क्या है? रमीम, हड्डी का पुराना होकर गल सड़ जाना। इसीलिए तो वो कब्रस्तान से जाकर एक हड्डी लेकर आया था ना, और कहने लगा कि इसको कौन जिंदा करेगा। कुल ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, यो ये हल्लजी, इसको जिंदा करेगा, अल्लजी वो जात, अनशाहा अव्वल मर्रा, पैदा किया इसको पहली बार, वह हुआ बिकुल्ली खल्किन अलीम, और वह तखलीक का हर काम जानता है, उसको खूब पता है कि चीजों को कैसे पैदा किया जाता है। जिसने अव्वल मर्तबा पैदा किया, जो सब तरह की पैदाइश को बखूबी जानते हैं वही इंसान को फिर पैदा करेगा। पहली दफा पैदा करना ज्यादा मुश्किल है, अब दूसरी दफा पैदा करना जो है और हिसाब किताब लेना अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। कौन ऐसा करेगा कि दोबारा इंसान को जो है वो उठा खड़ा करेगा? अल्लज़ी वो ज़ात जअला लकुम, जिसने बनाया तुम्हारे लिए, मिनश्शजरी दरख्त से, अल-अख़दरी सब्ज़, अल-अख़दरी सिर्फ मुशब्बा है और अख़दर कहते हैं सब्ज को, सुर्ख को क्या कहते हैं? अहमर, और काले को क्या कहते हैं? अस्वद, सफेद को क्या कहते हैं? अबियद, और जर्द को क्या कहते हैं? अस्फर। माशाल्लाह बहुत से रंग अब आपको आते हैं। तो वो जात जिसने बनाया तुम्हारे लिए दरख्त हरा भरा, उसे हरे भरे दरख्त से क्या बनाया? नारन, आग। वो जात जिसने हरे भरे दरख्त से तुम्हारे लिए आग बनाई, फायदा, बस अचानक सब दरख्त होता है, फिर तुम देखते हो, अंतुम मिनहु तूकदून, के तुम इसके जरिए चूल्हे रोशन करते हो। तूकदून क्या है? पीछे पड़ चुकी वो काफ दाल, और मानी इसके क्या है? आग भड़काना, आग जलाना, के तुम इससे आग भड़काते हो। इसके दो मानी हैं। एक मानी तो क्या है कि अल्लाह ताला ने हरे भरे दरख्तों में आग की खासियत रखी है, आग का मादा रखा है कि जिसकी वजह से हम दरख्तों से आग जलाते हैं। मसलन क्या कि वही दरख्त जो सरसब्ज होता है, ग्रीन होता है, और फिर क्या होता है कि वो दरख्त जब सूख जाता है तो लकड़ियां जलने लगती हैं और रोशन रोशनी देने लगा, सूख कर रोशनी देने लगा, है ना। और कहते हैं एक मानी तो ये है कि हरे भरे दरख्तों में अल्लाह ने आग की खासियत रखी है, और कहते हैं दूसरे मानी ये है कि मरख और अफार, ये नोट कर लें, मरख मीम रा खा ऐन फा अलिफ रा, मरख और अफार ये दो दरख्त थे। अहले अरब इन दो दरख्तों की हरी भरी टहनियों को लेकर एक दूसरे पर मारते तो उससे आग झड़ने लगती। अरब के बद्दू आग इन टहनियों से जलाया करते थे। वैसे तो आप देखें कि माचिस और बहुत सी चीजें फिर बाद में बन गई, और आज जो है साइंस क्या कहती है, ऑक्सीजन पौधों और सब दरख्तों से पैदा होती है ना। और जब तक ऑक्सीजन न पैदा हो तो आग नहीं जल सकती। तो ये है बात कि अल्लज़ी जअला लकुम मिनश्शजरिल अख़दर नारन, कि वो जात जो सब दरख्त से आग को रोशन करता है, वो जात जिसने तुम्हारे लिए सब दरख्त पैदा किए, तुम्हारे लिए सब दरख्तों से आग पैदा कर दी और तुम इससे अपने चूल्हे रोशन करते हो। अब अलैहिस्सल्लज़ी, अल्लाह ताला पूछते हैं क्या वो नहीं है, अलैहिस्सल्लज़ी क्या नहीं है वो जात, खलक़स समावाति वल अर्दा, जिसने बनाया आसमानों को और जमीन को। आसमान और जमीन कहकर मुराद क्या है? पूरा निजाम मलकूती, पूरी कायनात, कि वो जात जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, क्या वो इस पर कादिर नहीं है? बेकादरीन इस्म फाइल है, क्या वो इस पर कुदरत नहीं रखता? अला अन यखलुक मिसलहुम, के इन जैसों को पैदा कर सके, इंसान को अल्लाह ताला फिर पैदा कर सके। कादरीन, ताकत रखना, काबू पाना, गालिब होना, गिरफ्त करना। तो क्या अल्लाह ताला इन जैसों को दोबारा पैदा नहीं कर सकता? इन जैसों पर अल्लाह गिरफ्त नहीं कर सकता? इन जैसों को अल्लाह ताला पूछ नहीं सकता? बला, हाँ क्यों नहीं, खुद ही सवाल है और फिर खुद ही जो है अल्लाह जवाब दे रहे हैं, हाँ क्यों नहीं। वहुवल खल्लाकुल अलीम, खल्लाक वो अल्लाह है असल बनाने वाला, अल अलीम सब कुछ जानने वाला, खल्लाक मुबालगे का सीगा है, वो बड़ा पैदा करने वाला है, वो खूब जानने वाला है। उसकी कुदरत क्या है? इन्नमा अमरुहु, जब वो हुक्म देता है उसको, यानी जब वो अल्लाह ताला जो है इसका हुक्म क्या है? इन्नमा अमरुहु, सिर्फ हुक्म उसका, इजा जब अरादा शैयन, इरादा किया इसने किसी चीज का, यकूला तो वो कहता है लहू उस चीज के लिए कुन हो जा, फयकून पस वो हो जाती है। तो अल्लाह की कुदरत और उसकी कुदरत के कमालात मक्का वालों तुम जानना चाहते हो, तुम देखना चाहते हो, अल्लाह के पास इसका पूरा इख्तियार है कि बस वो इतना ही कहता है कुन और पूरी कायनात क्या है फयाकून, बस वो हो जाती है। फसुबहान अल्लज़ी बियदिही मलकूत, फसुबहान अल्लज़ी बियदिही मलकूत कुल्ले शैइन व इलैही तुरजऊन, बस पाक है वो जात। तो क्या कहना चाहिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहमदिही सुभान अल्लाह अल-अज़ीम। तो हमें अल्लाह की पाकी बयान करनी चाहिए, बस पाक है वो अल्लाह बेअदही जिसके हाथ में मलकूत बादशाहत है। मलकूत लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, अब आप देखें कि मुल्क भी तो आ सकता है ना, मुल्क और मलकूत दोनों के एक ही मानी होते हैं। ये ऐसे ही है जैसे रहमत, रहमत और रहमूत है ना, रहबत और रहबूत, जबर और जबरूत। तो ये असल में जैसे रहमूत, जबरूत, रहबूत, ये सब मुबालगे के सीगे हैं। तो मुबालगे के लिए ये जो पूरी लंबी ता है ना, इसका इजाफा किया गया है। तो अल्लाह ताला क्या बात बता रहे हैं कि वो अल्लाह है जिसके पास मुकम्मल इक्तदार है कुल शैन हर चीज का, वइलैही तुरजऊन और उसी की तरफ तुम पलटाए जाने वाले हो। मैं लहलहाती शाख को समझाता जिंदगी, पत्ता गिरा दर से फना दे गया मुझे। तो इंसान जो है वो दुनिया को सब कुछ समझता है और अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं कि अल्लाह ही खालिक, अल्लाह ही मालिक, अल्लाह ही हाकिम और अल्लाह ही जो है वो बादशाह है। मालिक यौमिद्दीन, वो रोजे जजा का मालिक है। तो इंसान अपना खालिक नहीं है, तो फिर तकाजा क्या है इस बात का कि जब अल्लाह खालिक है हमारे अंदर आजी इंकसारी हो, हम बहसों को छोड़ दें और उसके बाद जो है वो अल्लाह की बंदगी करें। तो मवेशी हैं, आग है, दरख्त है, सूरज चांद सितारे हैं, रात और दिन हैं, जहाज हैं, हवाएं हैं, कायनात का जर्रा जर्रा जो है अल्लाह ने बनाया और हमें भी बनाया। तो कायनात तो अल्लाह की अताअत करे तो इंसान तो भी अल्लाह की अताअत इख्तियार कर ले। तो ये थी सूरत यासीन। आप में से कितने लोगों को सूरत यासीन आती है? अच्छा माशाल्लाह काफी लोगों को सूरत यासीन आती है और अल्हम्दुलिल्लाह। तो असल बात क्या है कि जो सबक आना चाहिए वो ये है कि एक अल्लाह की बंदगी, आखरत की तैयारी, अपनी आजजी और बेबसी का एहसास और अपने आप को अल्लाह के आगे झुका दें और लड़ाइयां खत्म कर दें। सूरत यासीन आने का मतलब क्या है, ये नहीं कि सुबह शाम इसको पढ़ें, मुझे और आपको हिफ्स हो, लेकिन ये कि मैं और आप इसके पैगाम को अपनी जिंदगियों में नाफिस ना करें। और वो पैगाम है दुनिया में अल्लाह की बंदगी और आखरत की तैयारी। और इसमें इतने खो जाएं, इतने मगन हो जाएं, इतने लग जाएं, सारे गम भूल जाएं, सब परेशानियां खत्म हो जाएं। एक ही गम है, एक ही फिक्र है, एक ही लगन है, एक ही तड़प है, मेरा रब मुझसे नाराजी हो जाए, पता नहीं मेरे रब की इसमें रजा है कि नहीं, यही होना चाहिए। तो फिर एक बात के सूरत यासीन की फजीलत में लोगों मुफस्सरीन की जो है हमें मिलती हैं बहुत सी अहदीस जो मुफस्सरीन ने बयान की है और मुहद्दसीन ने बयान की हैं। तो पूरा कुरान बड़ा अफजल है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, जिसको भी पढ़ेंगे जिसको भी याद रखेंगे बस एक बात याद रखें कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी जिंदगियों को कुरान की दौलत से संवारने वाला और सजाने वाला बनाए। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।